ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم ماتھر بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں محترم قمر الزماں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے جناب انیس بھائی صاحب کے خسر ان کا وصال ہو گیا تو ان کی تعزیت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی نشست جو ہے اس کو عنوان بنا کے دین کا مذاکرہ کرنے کے لیے رکھ لی گئی اور ساتھ ہی ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہو جائے گی اجتماعیت کے ساتھ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی لکھے ہیں کہ یہ بھی گزارش کر لی جائے ساتھیوں سے کہ اپنے اپنے طور پر جس سے جتنی توفیق ہو جس کو وہ ان کے لیے پڑھ کے ان کی روح کو اس کا ثواب بخش دے کیونکہ معاشرے میں مروجہ طریقے پر جو ایصال ثواب کا رواج ہے جمع ہونا قرآن شریف کے لیے پڑھنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا پھر ان کو کھلانا پلانا ہمارے انڈیا میں تو پتہ نہیں آپ کے پاس کیا رواج ہے ہمارے یہاں تو اس کی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جماعتیں ہیں تو ان جماعتوں کو دعوت دی جاتی ہے بعد آفتہ وہ آتے ہیں قرآن شریف ختم کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں پھر ان کی فیس ہوتی ہے ان کے کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے فیس بعد آفتہ طے کر کے شخصیت کے اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے فیس مقرر کر کے لیتے ہیں تو اس کو علماء نے بدعت بتایا کہ بھئی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ایصال ثواب کا ایصال ثواب برحق ہے پورے چاروں اماموں کے پاس برحق ہے اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی مسلک ہے یہ ایصال ثواب کا منکر غلط راستے پر ہوگا ایصال ثواب تو ہے لیکن اس کا جو طریقہ بریلوی مکتب فکر میں رائج ہے اس کو علماء پسند نہیں کرتے چونکہ اس میں بہت سی غلط چیزیں شامل ہو گئیں البتہ جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اس سے جو کچھ پڑھا جا سکتا ہے پڑھے پڑھ کے بخش دے اور اس کا کوئی معاوضہ مقرر نہیں ہوتا تعلیم قرآن پر تو اجرت لے سکتے ہیں تلاوت قرآن پہ نہیں لے سکتے یہ قاعدہ ہے اگر پڑھا رہا ہے کوئی آدمی کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے بڑوں کو قرآن پڑھاتا ہے یا تفسیر پڑھاتا ہے حدیث پڑھاتا ہے فقہ پڑھاتا ہے تعلیم قرآن میں آتا ہے وہ بھی کیونکہ فقہ جو ہے وہ قرآن پاک ہی کے مسائل ہوتے ہیں حدیث بھی قرآن پاک ہی کی تفسیر ہوتی ہے تو اس کے اوپر تو اجرت علماء نے جائز بتائی ہے کہ وہ تعلیم ایک الگ چیز ہے تلاوت جو ہے وہ خالص عبادت ہے عبادت پر معاوضہ جائز نہیں ہے خالص عبادت پر معاوضہ جائز نہیں ہے اس لیے تلاوت کو نہ تو اس کے معاوضے میں کھانا ہے نہ اس کے معاوضے میں پیسہ ہے اور چونکہ اس کا رواج پڑ گیا تو معاوضے کے ساتھ میں جو تلاوت ہوتی ہے اس کا ثواب ہی نہیں ملتا جب ثواب ہی نہیں ملتا تو بھیجے گا کیا آدمی جب کمائے گا نہیں تو بھیجے گا کیا پہلے آدمی نفل ثواب کماتا ہے اپنے لیے پھر اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ یہ نفل ثواب فلاں کو دے دیجئے اور یہ साबित है नुसूस से कि ये पहुंच जाता है, गुनाह नहीं पहुंचता, ईसाले गुनाह नहीं होता, ईसाले सवाब होता है। शियों के पास ईसाले गुनाह भी होता है, उनके अकीदे में यह है कि जैसे सवाब का ईसाल होता है वैसे गुनाह का भी ईसाल होता है। उनके पास ये है कि गुनाह करो, गुनाह करके बोलो कि ये जो है ना ये कातिलान हुसैन को पहुंच जाए, तो पहुंच जाता है उनके पास। हमारे पास ये है कि ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्रा उख़रा, एक आदमी दूसरे आदमी का बोझ नहीं उठाएगा, बोझ जो है ना विज़्र गुनाह का असर होता है, वो नहीं पहुंचता, इसलिए गुनाह नहीं हो सकता, वो हमने जितने गुनाह किए हैं वो फलां को पहुंच जाए। सवाब के अंदर जो फ़राइज़ वाजिबात होते हैं उनका भी इसाल नहीं होता, चूँकि वो आदमी के ज़ाते फ़राइज़ हैं, उनका उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, अपनी फ़र्ज़ नमाज़ें, अपना फ़र्ज़ रोज़ा, अपना फ़र्ज़ हज, अपनी फ़र्ज़ ज़कात, इसका सवाब नहीं होता, इस सारे सवाब नहीं। बकिया नफिल अमाल का इसाल होता है, इसाल सवाब हो सकता है, चूँकि ये भी बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक आदमी का अमल है दूसरे आदमी को कैसे काम आएगा वो, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान फरमाया है, मतदीद हदीसों में यह मजमून है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लम, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उनके ज़िम्मे हज था, वो उन्होंने हज नहीं किया, अगर मैं उनकी तरफ से कर दूँ तो क्या वो हज हो जाएगा, उनको उनका फ़र्ज़ अदा हो जाएगा वो? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उन पर कर्ज़ होता और तुम उसको अदा करते तो वो अदा होता या ना होता? वहाँ हो जाता। फरमाया बस ये भी हो जाएगा। इससे उलमा किराम ने फरमाया कि और दूसरी उस पर और भी रसूल हदीसें और भी मौजूद हैं, उन पर कयास करते हुए यह फरमाया कि वह पहुँचता है। फिर इसमें उलमा किराम का थोड़ा सा इख्तलाफ यह है कि कौन कौन सी इबादतों का इसाल हो सकता है, कौन सी का नहीं हो सकता। इबादत कौली, इबादत बदनी, इबादत माली। तो इबादत कौली और इबादत माली इन दोनों के ऊपर तो सबका इत्तेफाक है, माल के ज़रिए से आप किसी गरीब को खाना खिला दें उसका सवाब पहुंचा दें, कपड़े बना दें उसका सवाब पहुंचाने की नियत कर लें, खाना खिलाने में भी नियत ही करना होता है, सामने खाना रख के पढ़ना नहीं होता, उसको बख्शना नहीं होता, वो तो जब दूसरा खा लेगा गरीब का पेट भर जाएगा तब आपको सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने गरीब को खाना खिलाया, उस सवाब को आप पहुंचने की दुआ करेंगे कि फलां की रूह को पहुंचे, चाहे नकद पैसे देकर, चाहे कपड़े पहना कर, चाहे जो है खाना खिला कर, और चाहे बहसियत मजमूई इंसानों को फ़ायदा पहुंचा कर, वो भी होता है, जैसे किसी के लिए कुआं खुदवा देना, बोरिंग की ज़रूरत पड़ जाती है बोरिंग बनवा देना, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद का इंतज़ाम कर देना, नमाज पढ़ने की सहूलत फराहम कर देना, सराय बना देना। सराय जो है ना रेस्ट एरिया को कहते हैं, तो पहले ज़माने में जो सराय होते थे उसमें क़याम भी होता था बाज़ाब्ता, अब यहाँ तो ये है कि बस टेम्पररी तौर पर अपनी ज़रूरत पूरी करके निकल जाते हैं आखिर से। वहाँ पर जो सराय होते थे पहले, उसमें लोग मुस्तकिल मुसाफिर ठहर जाते थे कई कई दिनों के लिए, हफ्तों के लिए लोग ठहर के फिर आगे सफ़र करते थे मंजिलें तय करने के लिए, उसको सराया कहते हैं, उनकी भी तरगीब दी गई। तो माली इबादतों का पहुंचना ईसा अलैहि सवाब करना, इसकी गुंजाइश है, और कौली जो इबादत होती है इसकी कुरान पाक पढ़ के बख्श देना, बदनी जो इबादत है या मुरक्कब जो इबादत है बदन और माल दोनों की, उनके बारे में इख्तिलाफ है। तो जो मुरक्कब इबादत है यानी हज और उमरा, उसकी भी इजाज़त है, क्योंकि उसमें एक हिस्सा तो कबूलियत का आ ही गया है, तो दूसरा हिस्सा उसके ज़िम्न में आ ही जाता है। खालिस नमाज वगैरह इसके बारे में दो कौल हैं उलमा के। अहनाफ का एक कौल ये है कि ये भी पहुंच जाती है, नमाज नफिल नमाज पढ़ के अगर आप बख्श देंगे पहुंच जाती है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत की वजह से, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जिस किसी को मेरे इंतकाल की इत्तला मिले उसको चाहिए कि दो रकात नमाज पढ़े और उसके बाद कहे कि या अल्लाह इसका सवाब अबू हुरैरा की रूह को पहुँच जाए। तो ज़ाहिर है कि ये उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानकर सीखकर ही फरमाया। सहाबा की कोई ऐसी बात जिसका ताल्लुक अकल से ना हो वह हदीस होती है, क्योंकि वो हुज़ूर से सीख के बगैर नहीं बोल सकते, वो तो उम्मीद मायज थे, उन लोगों को क्या पता था मजहबियात के बारे में जब तक हुज़ूर ने नहीं बताया उनको। इसलिए उलमा उसको हदीस कहते हैं। गर्ज ये है कि इसाले सवाब का एहतमाम जो है दोस्तों को, अकारीब को, औलाद को करना चाहिए। जाने वाले के लिए सबसे बेहतरीन खिदमत यही होती है, जो इस दुनिया से गुजर गया उसके क्या कर सकते, उसके साथ सुलूक क्या करेंगे आप, यही करेंगे कि आप उसके लिए इसाले सवाब कर लें। चूँकि लोगों के पास, लोगों की आदत ऐसी बनी हुई है कि अगर उनको कोई चीज़ लगा दी जाए आदत के तौर पर तो वो करते हैं वरना नहीं करते। इसलिए पहले के ज़माने में यह मामूल था कि नमाज के बाद फातिहा दिलवा देते थे, फजर की नमाज के बाद फातिहा बोल दिया इमाम तो सब पढ़ देते थे, असर की नमाज के बाद अल-फातिहा कह दिया तो सब पढ़ देते थे। बुज़ुर्गों ने मामूल के तौर पर दिया था वो लोगों को कि भाई हर रोज़ दो मरतबा कम अज़ कम फातिहा पढ़ के हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया करो, और अपने ख़ानदान वालों को भी मरहूम इनको भेज दिया करो, वरना तुम तो वैसे याद नहीं रखोगे किसी को अपने अपने दुआओं में और इसमें। मगर वो ऐसा मामूल उसका बन गया, लोगों के दिमागों में ऐसी बैठ गई वो चीज़ कि जो फातिहा ना दे उसकी नमाज ही नहीं होती। तो अब असर की नमाज के बाद फातिहा अगर नहीं दिया तो वो वहाबी हो गया, वहाबड़ा हो गया, अब भाई इसकी तो नमाज ही नहीं होती। फजर की नमाज फातिहा देना ज़रूरी है, इमाम की शरायत में से होता था। जब हम नए नए फारिग होके गए, जहाँ पे भी मस्जिद में जाके कहते कि भाई हम इमामत करना चाहते हैं, तो बोले भाई ये शरायत है, नमाज़ पढ़ने के लिए आपको इमामा बांधना पड़ेगा और फजर के बाद और असर के बाद फातिहा देनी पड़ेगी और जुमा की नमाज के बाद आपको खड़े होकर सलाम पढ़ना पड़ेगा, या नबी सलाम अलैका है ना। हमने कहा भाई हम फातिहा के तो कायल हैं लेकिन ये नहीं कर सकते, तो कहने फिर इमामत भी नहीं मिल सकती। हमने हमारे शेख से पूछा कि वो लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो शेख ने फरमाया कि दूसरे की रियायत में अपने दीन को ख़राब करने की शरीयत इजाज़त नहीं देती, लिहाजा आपको जायज़ नहीं है इमामत करना ऐसी जगह पर। लोग बोलते ना कि भैया लोग ऐसे हैं जरा उनके साथ हाँ में हाँ मिला के कर लेंगे, उसके बाद थोड़े दिन के बाद उनको सही कर लेंगे, या सबको लेके चलना चाहिए, सबकी रियायत होनी चाहिए। लोगों को मालूम ही नहीं है सबके खातिर से अपना मजहब नहीं ख़राब कर सकता बंदा, रियायत का ये मतलब नहीं होता, सबको साथ लेके चलने का ये मतलब नहीं होता। हमारे शेख ने लिखा कि जायज़ ही नहीं है आपको इमामत करना। अब हम उनसे ये नहीं पूछ सकते थे कि अगर हम इमामत करना जायज़ नहीं है तो हम खाएंगे क्या, नौकरी हमारी यही है, पढ़ के आए हैं मदरसे से तो वही इमामत करेंगे मदरसे में पढ़ाएंगे। अगर हम ये पूछते उनसे, ये कहते उनसे कि हम खाएंगे क्या, तो वो बोलते फिर शरीक हो जाओ मदरसे में, कि तुमको इतना ही नहीं पता कि खिलाएगा कौन, यही नहीं बना तुम्हारा यकीन ईमान, तो फिर वही तुमने, तुम्हारे पास दीन क्या आया, क्या तुमने कुरान पढ़ा, क्या तुमने हदीस पढ़ा। कमाने पर ही खाता है बंदा, बगैर कमाई के नहीं खाता, एक मखसूस कमाने पर ही खाता है, उसके बगैर नहीं खाता बंदा। रिस्क की जिम्मेदारी तो ऊपर वाले की है, आप चाहे कमाओ चाहे मत कमाओ चाहे कुछ भी कमाओ रिस्क। अगर हम ये सवाल करते हमारे उस्ताद से कि भाई हम फिर खाएंगे क्या, तो वो फिर दाखिल कर देते हमको 8 साल के लिए, तो हमने पूछा ही नहीं, उनसे हिम्मत ही नहीं हुई। हमारे वाले साहब जब हम पढ़ के आ गए तो कहने लगे तबलीग में जाओ, तबलीग करो, बयान करो। अब हमारी हिम्मत ही नहीं हुई हम ये बोलने की कि अगर हम तबलीग में पढ़ते रहेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि अगर हम उनको ये बोलते हैं कि खाएंगे क्या यानी उसके लिए कमाना ज़रूरी है, तो वालिद साहब तो मदरसे से भी ज़्यादा सख्त थे हमारे, वो तो सूफी आदमी थे, उनसे मसला, उनसे निमटना तो मदरसे के मुकाबले में और मुश्किल था, उनसे भी नहीं बोल सके हम कि भाई हम खाएंगे क्या, ये सवाल हम कर ही नहीं सकते थे। और इसीलिए हम अपने ख़ानदान में हमारे वालिद साहब से, अपने बुज़ुर्गों से, हमने शादी के रिश्तों में बच्चा क्या काम करता है पूछते हुए नहीं देखा, क्या कमाता है, क्या सैलरी है, क्या मतलब है बात का, इस सवाल का क्या मतलब है, ये पूछते थे। हमारी 5 बहनें हैं, इसमें से एक बहन हमारी माजूर थी, 4 महीनों की शादी हुई, हमारे वाले साहब ने एक के बारे में भी ये नहीं पूछा कि बच्चा क्या कमाता है, एक के बारे में भी नहीं पूछा। एक साहब के बारे में सिर्फ ये था कि वो नमाज नहीं पढ़ते और फिल्म देखते हैं, वो हमारे रिश्तेदारों में से थे, उनका रिश्ता आया हमारी एक बहन को, वाले साहब ने मना कर दिया, तो क्यों मना किया ये नहीं समझ में आया था ना। तो वो जो बहन थी हमारी फुप्पू का बच्चा था, वो साहब उनका भी इंतकाल हो गया, तो हमारी फुप्पू कहने लगी, वो हमारी फुप्पू सौंती ली थी, यानी हमारी असली फुप्पू के इंतकाल के बाद उनसे शादी हुई थी हमारे फुप्पा की, उनका बेटा था वो, उन्होंने एक ताना दिया वाले साहब को उन्होंने कहा कि अगर तेरी सगी बहन का बेटा होता तो तू ऐसे ही मना करता क्या? ये कहा। तो वाले साहब ने फरमाया कि ये वजह नहीं है मेरे मना करने की, मैं दे दूंगा बेटी। सिर्फ एक बात है, बाद में मेरे को ये नहीं सुनने में आना चाहिए कि बेटा सिनेमा की लाइन में खड़ा हुआ था। बस एक ही चीज़ चाहिए मुझे, बेटा सिनेमा की लाइन में, दामाद जो है ना सूफी साहब का, सिनेमा की लाइन में टिकट खरीदने खड़ा हुआ था, ये मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बस अगर इसकी कोई गारंटी दे देता है मैं बेटी दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। तो बेटे से पूछे, लड़के से, कहने के कह दीजिए फूफा मामू जान से कह दीजिए कि ये नहीं सुनेंगे शादी के बाद कि मैं कभी किसी लाइन में खड़ा हुआ था। बस हो गई बात, शादी हो गई। कोई कमाते वमाते नहीं थे, नौकरी थी नहीं उनको, तो हमारे खान फूफा के बच्चे थे ना, तो इस हमको पता है कि नौकरी क्या थी क्या नहीं। वो कोई कमाते नहीं थे, उनको पूछा ही नहीं हेल्थ वाले सब, शादी कर दी। और आप हैरत करेंगे कि शादी के एक महीने में उनको जॉब मिली, वो भी सरकारी, खुद से ही आई नौकरी चल के रेलवे के अंदर। और 6 महीने के बाद माशाल्लाह दाढ़ी उड़ी नमाज उमाज, वो हमारी बहन पाबंद थी, उसने सब पे लगा दिया उनको। किसी ये सवाल करना कि क्या खाएगा, ये सही तरीका नहीं होता। क्या कमाएगा, जो उसकी किस्मत में खाएगा, जो उसकी किस्मत में है, एहसास जिम्मेदारी है नहीं वो देखा जाएगा। मतलब ये है कि जब शादी करेंगे तो उसके खर्चे को तो उठाना पड़ेगा ना, तो जिम्मेदारी का एहसास होगा तो करेगा वो। अल्लाह देगा तो देगा, नहीं देगा तो भूखा रहेगा, खुद भूखा रहेगा तो उसको भी भूखा रखेगा, नहीं खुद खा के उसको नहीं खिलाएगा, ये करने वाला नहीं चाहिए। यह असबाब मौजूद है फिर भी कोशिश नहीं कर रहा, ये नहीं, एहसास जिम्मेदारी होना चाहिए कि भाई जब ये मेरी निगरानी में है बच्चे बीवी, तो उनकी खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी है, मुझे खिलाना चाहिए, उनको खिलाना है, ये दीन का तकाजा है, दीनदारी देखी जाती है। तो खैर ये बात इस पर चल पड़ी, और ये भी बहुत अहम बात है, तो इसी वजह से हम लोग ये सवाल नहीं कर सकते थे अपने शेख से, ना अपने नाम को शेख ऐसे मिले, ना हमारे वालिद साहब ऐसे थे, तो इसलिए हमने इमामत ही नहीं की। आजकल ये मसाइल ही नहीं मालूम है बच्चों को, हमारे मदरसों से पढ़ के भी आ जाते हैं, और जिस जगह जिस सेंटर में इमामत कर रहे हैं वो वहाँ की कमेटी जैसी नमाज पढ़ाने को बोले वैसी पढ़ा देंगे, जैसे जुम्मा पढ़ाने को बोलेंगे वैसा पढ़ा देंगे, जैसे ईद पढ़ाने को बोले वैसे पढ़ा देंगे, जैसे रमज़ान शुरू करने को बोले वैसे। भाई कैसे होता है यार ये सब? हमने जो कुरान और हदीस सीखा है उसको लगाओ लोगों पे, उस पर लोगों को लगाओ, न कि लोगों के ऊपर अपने को लगाने का है। लोगों को कुरान और हदीस की तरफ लाना है ना भाई, ना कि हमको, ना कि कुरान और हदीस को लोगों की तरफ ले जाना है। ये थोड़ा सा अज़्म चाहिए होता है, इसका ताल्लुक तरबियत से है। खैर इसीलिए उलमा ने ये फरमाया है कि इसाले सवाब जो है इसका बड़ा अहतमाम होना चाहिए, और इसका इंतज़ार होता है वालिदैन को और ख़ास अपने अकरबा को, कि सबसे ज़्यादा मुंतज़िर होते हैं वो दुआ के और इसाले सवाब के, क्योंकि और तो कोई चीज़ वहाँ पहुँचती नहीं, या फिर उनके वो अमाल जो खुद उन्होंने ऐसे अंदाज में किए कि उनका सवाब कंटिन्यू है, सदका जारिया करके गए वो, उन्होंने खुद अपना इंतज़ाम कोई कर लिया जिसकी वजह से उसका सवाब उनको मुसलसिल मिल रहा है। आलम बरज़ख जो है उसका अजीब सिस्टम है, आलम बरज़ख के दो दरवाजे हैं, यानी उसका ताल्लुक दोनों दुनियाओं से है, आखिरत से भी है और दुनिया से भी है। दुनिया में जो चीज़ ऐसा करके गया बंदा कि जिसका सवाब जिसका यानी पहुंच सकता है, अकाउंट ओपन रखा जा सकता है, तो वो ओपन रहता है। इसीलिए मस्जिद बना के गया तो आदमी तो मर गया लेकिन उसका सवाब उसके अकाउंट में जा रहा होगा नमाज पढ़ाने का। मदरसा बना दिया, हाफिज बना दिया किसी को, आलिम बना दिया किसी को, या और भी कोई ऐसे काम सदक़े जारिया के कर दिए, दावत का काम कर दिया, लोगों को हिदायत पे लगा दिया, तौबा करा दी लोगों की, लोग नमाज रोज़े के पाबंद हो गए, तो ये जो सवाब सदक़े जारिया के तौर पर किए हैं, बावजूद इसके कि आदमी मर चुका है उसके नाम आमाल में बराबर भर्ती होते रहेंगे, इस एतबार से दुनिया से इसका ताल्लुक रहता है। ऐसे ही वलदुन सालिहुन यदउ लहु, वो सदक़े जारिया में से है ना, जो औलाद सालेह उसके लिए दुआए मगफिरत करती रहती है, और वो भी जो है ना उसके सदक़े जारिया में से शुमार है। हत्ता कि यहाँ तक लिखा है किताबों में कि जो आदमी से उसके वालिदैन नाखुश हों किसी वजह से, बाप नाराज़ थे, माँ नाराज़ थी, आमतौर पर शादियाँ होने के बाद में ये मसाइल हो जाते हैं, बाप के नाराज़गी की वजह आमतौर पर कारोबार होते हैं, माँ की नाराज़गी की वजह आमतौर पर बहू होती है, बहू के मामले में आदमी अगर अगर भी बहू का साथ बीवी का साथ नहीं देता है तो बीवी नाराज, बीवी का साथ देता है तो माँ नाराज। अब इसको बेचारे को जिंदगी गुजारनी होती है खलवत में जलवत में, तो वो बीवी की तरफ झुक जाता है। जब बीवी की तरफ माइल ज़्यादा हो जाता है तो माँ उसको हक तलफी समझती है, कहीं वाकईतन हक तलफी होती है कहीं होती नहीं है वो समझती है। तो ऐसी सूरत में जो है कभी माँ ना कभी माँ नाराज रहती है बच्चों से और कभी बाप नाराज रहता है। कारोबार में कंपनी है, बिजनेस है, कुछ और है, कई बच्चे शरीक हैं या बाप के साथ काम कर देते, अब उसका हिसाब किताब सही नहीं है, बाप बोलता मैं रख लेता हूँ, बेटा बोलता मैं रख लेता हूँ, मुझे पैसे नहीं देते बराबर, जो भी बात होती है उसकी वजह से आके थोड़ी बहुत नाराज़गी चलने लगती है। तो अगर किसी वजह से माँ बाप का इंतकाल हो जाए इस हालत में कि बच्चे से नाराज़गी हो, बच्चे को उसको नाराज़गी हो, तो हदीसों में आता है कि उनके लिए दुआए मगफिरत का और रिसाले सवाब का कसरत से एहतमाम करने पर, हदीसों में तो सिर्फ दुआए मगफिरत का एहतमाम का जिक्र है, करने पर अल्लाह ताला उसको फरमा बरदारों में लिख देते हैं, बिरुल वालिदैन में आ जाता है। वालिदैन के साथ में नेकी करने का जो की जो फजीलत है, जो हुक्म है इस्लाम में, उसमें आ जाता है। तो इसीलिए जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने माँ बाप हयात दिए हैं भी, उनको उसकी उनकी पूरी कदर करनी चाहिए, उनकी कड़वी कसेली झेल लेनी चाहिए, उनका गुस्सा सह लेना चाहिए, और जन वाला उनकी तबीयत की नागवारी उसको भी झेल लेना चाहिए। ये हमारे बड़े अकदार में से है, इस्लाम की बहुत बड़े अकदार में से है कि बूढ़े माँ बाप की कदर करना, उनकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, उनके होने की वजह से आदमी जो डिस्टर्ब अपने को महसूस करता है उसको बर्दाश्त करना। यहाँ की अमेरिकन कल्चर का हिस्सा यह है कि भाई अब तुम बूढ़े हो गए ना, तुम हमारे रास्ते में कांटे मत बिछो, हमारे लिए रोड़ा मत बनो, हमारे एंजॉयमेंट के अंदर फ़र्क मत, हमारे हमारे कबाब में हड्डी मत बनो, बोलते भी हैं बात आप तक। इसी वजह से यहाँ पे किसका रिवाज है, नर्सिंग होम का रिवाज है, वहाँ ले जाके छोड़ देते हैं। वो बेचारों को साल भर किसी से बात करने का मौका नहीं मिलता, महीनों वो लोग बात के लिए तरस जाते हैं, और महीने साल में एक मरतबा एक गुलाब का फूल ले जाके दे देते हैं कि ये मदर डे है, ये पिदर डे है, ये फलां डे है, वो फलां डे। ये नहीं सिखाया इस्लाम, इस्लाम 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 ने तो कहा कि ये तो तुम्हारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि माँ बाप बुढ़ापे में मिल गए, तुमको जन्नत मिल रही है, कदर कर लो, तुम इनकी खिदमत कर लो, दवा पिलाओ उनको रोज़ाना। और लड़के की जिम्मेदारी है खुद से उनको टाइम देना फिजिकली, लड़के की असल जिम्मेदारी है। लड़का अगर उसके पास टाइम नहीं मिलता है तो वो मिन्नत समाजत बीवी की करके बीवी से काम कराए, ये बीवी का एहसान है शौहर के साथ कि भाई तुम्हारा काम मैं कर दे रही हूँ, ये मेरे लिए सआदत की बात है। तो बीवी शौहर बोलेगा भाई ठीक है आप मेरा काम कर रहे हैं, मैं आपका बहुत ममनून हूँ, ये उसका असल कॉन्सेप्ट ये है उसका। माँ लड़की को यानी बहू को खिदमत करना चाहिए सास ससुरे की, लेकिन है ये इसमें असल खिदमत लड़के की जिम्मेदारी, उसको टाइम निकालना चाहिए, उनकी खिदमत करना, हाथ पैर दबाने की भी, खाना खिलाने की भी, दवा ले जाने की भी, दवा खिलाने की भी। और जो है अब ऐसे वक्त में उनको खांसी हो रही होती है, उनको बलगम आ रहा होता है, उनको इस्तिंजा के लिए दुश्वारी हो रही होती है, बार बार जो है ना अब यानी वो चिड़चिड़ेपन भी उनमें हो जाता है, उससे भी नाराज़, माकूल वजह से भी नाराज़ होते रहते हैं, बेमाकूल वजह के भी नाराज़ होते रहते हैं, कभी ख्वातीन की तरफ से ये मसला आता है, कभी मर्दों की तरफ से ये मसला आता है, उस सब को बर्दाश्त करना होता है। यही तो जन्नत मिलने का मतलब क्या होता है, तो खामखा मिलती है कोई जन्नत, जन्नत तो किसी किसी काम पर मिलती है। तो चूंकि ये सब चीज़ें पेश आती हैं, अल्लाह पाक को मालूम है, इसलिए फिर जन्नत मिलती है। इसीलिए बड़े खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने खिदमत की अपने वालिदैन की, और ख़ासतौर पर बीमारी में जिन्होंने खिदमत की। मैं अपने पर्सनल तौर पर जो जानता हूँ माशाल्लाह से, हमारे अनीस साहब के जो निस्बती बिरादर हैं, क्या नाम भाई का, आमिर मियाँ, और माशाल्लाह उसने अपने वालिद साहब की बड़ी खिदमत की, इंग्लैंड में भी होते थे, जर्मन वहाँ पे होता था वहाँ पे साथ ले जाता था, पाकिस्तान चले गए वहाँ लेके गया, वहाँ रहा, उनके साथ में खिदमत की। हालांकि उनके साहबजादे खुद बीमार हैं, उनके साथ में आरिजा है, फिर उसके बाद ये कनाडा ले लेके आ गए, वहाँ खिदमत की। और उनकी जो साहबजादी हैं अहलिया हमारे अनीस साहब की, उन्होंने भी अपने वालिद साहब की बहुत खिदमत की, क्योंकि मेरी भी मुलाकात उनसे रही है कई मर्तबा, बहुत मर्तबा, जब यहाँ होते थे शिकागो भी आना जाना होता था, मैं यहाँ आता था तो मुलाकात होती थी। बहुत नेक आदमी थे माशाल्लाह, बहुत मुत्तकी, परहेजगार, बाशरा, नमाज के पाबंद, फिक्र फिक्र के आदमी, और खुश खुशगो आदमी, फजूल बातों से एहतियात, फजूल काम नहीं, फजूल बात नहीं, गप्बाजी यानी गैर ज़रूरी, और बेहुदा ज़ुबान नहीं, गुस्सा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब आदमी थे, बहुत ही पसंदीदा अखलाक के आदमी थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफ़रत फरमा दे। आज हम इसीलिए बैठे हैं कि उनके लिए दुआएं मगफ़रत करें, कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी लग्जिशों को जो है वो लग्जिशों से दरगुजर फरमा दे, और उनकी जो हसनात हैं अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए, और जो कुछ भी उन्होंने नेकियाँ अपनी ज़िंदगी में की हैं और अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है अल्लाह तबारक व तआला, और एक बच्ची इनकी वहाँ पर जर्मन में होती है वो भी माशाल्लाह बहुत नेक बहुत अच्छी बच्ची है, वो भी आई थी यहाँ पे शिकागो तो मुलाकात हुई थी उनसे भी माशाल्लाह बड़े उन्होंने अपने औलादों की बड़ी अच्छी तरबियत की है। और ये माँ बाप ही के असरात होते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि भाई माशाल्लाह बाशरा लोग हैं, तखवे वाले हैं, दीनदार हैं, नमाज के पाबंद हैं, पर्दे के पाबंद हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। तो गर्ज यह है कि हमारे आमिर मियाँ ने बड़ी खिदमत की अपने वालिद साहब की, ऐसे ही जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप दिए हैं, दोनों ज़िंदा हों या दोनों में से कोई एक ज़िंदा हो उसकी खिदमत कर लेनी चाहिए उसको, और बिल्कुल बीवी की परवाह नहीं करना इसमें, इसमें बीवी की परवाह बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कितने ही नाराज़ हो जाए, माँ माँ है, माँ का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, अल्टरनेट नहीं है, बदल नहीं है, बीवी के तो दसियों बदल हैं, बीवी का तो बदल है, बीवी का क्या मसला है, माँ का कोई बदल नहीं, माँ नहीं बदल सकते आप, इसीलिए बीवी अगर अड़चन डाल दे माँ माँ बाप के मामले में खिदमत में तो इसकी बिल्कुल नहीं परवाह करना है, पैसा खर्च करने में उन पर, दवा दारू करने में उनकी, टाइम देने में उनको। बाद मरतब ऐसा होता है कि बहू साथ रहना नहीं चाहती, भाई मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मेरा शरीर हक है मुझको अलग रखो, कैसा रखेगा एक बंदा माँ बाप, अगर माँ बाप को अलग रखेगा वो तो कैसे खिदमत करेगा उनकी, वहाँ जाके सोएगा उनके पास, तो फिर तुम कहोगी कि भाई हमारे पास सो नहीं रहे, खाना पका के देगा वहाँ दो तीन घंटे लग जाएंगे तो तुम कहोगे कि तुम हमें टाइम ही नहीं दे रहे, और दो दो जगह कैसे मैनेज करेगा आदमी, इस मकान का भी किराया दे उस मकान का भी किराया दे, सोचना चाहिए भाई, एडजस्ट करो थोड़ा सा जगह इसी उनके लिए फराहम कर दो कि आपको हरज ना हो, बाकी ये क्या मतलब है कि माँ साथ नहीं रहना, ये क्या मतलब है कि बाप साथ, बेटा कहाँ रहेगा, औरत को तो ये बोलने का हक है कि मैं साथ नहीं रहती, लेकिन लड़के को ये बोलने का हक नहीं है कि चूंकि मेरी मेरी बीवी राजी नहीं है इस वजह से मैं नहीं रख सकता आपको, ये क्या बात है, बीवी को बोलो अगर तू राजी नहीं है तो मैं तेरे को अलग रख देता हूँ, लेकिन मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहूँगा, उसूल तो ये है ना भाई, इस्लाम ने जिस चीज़ को जैसे सिखाया है ना उसको वैसा देखने की आदत डालना, हमेशा अपने चौबच्चे में इस्लाम को लाके नहीं बिठाना। हज़रत यूसुफ़ सर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, इस ज़माने के मुसलमान की हालत ये हो गई है कि उसने अपना फ्रेम बना हुआ है, अपना फ्रेम बनाया है ज़िंदगी का कि मैं ऐसे ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, इसमें इस्लाम को लाके बिठाओ, अपने फ्रेम में इस्लाम को बिठाना चाहता है, और अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि इस्लाम को जो है इस्लाम के फ्रेम में खुद जाके बैठो, ये इस्लाम का फ्रेम है इसमें खुद एडजस्ट हो, ये उसने नमाज की जिम्मेदारी दी है, ये रोजे की दी है, ये जक़ात की दी है, ये हज की दी है, ये राइट्स की है, ये हकूक़ की है, ये माँ बाप के मामले की है, ये तुम्हारे बीवी बच्चों के मामले की है, ये तुम्हारे मालियात हैं, ये तुम्हारा खर्च है, ये तुम्हारे माशरत है, ये तुम्हारे अखलाक हैं, ये तुम्हारे ताल्लुकात हैं, दोस्तों दुश्मनों के साथ में सलूक है, खानदान वालों के साथ में सलूक है, उसका एक अपना फ्रेम बना हुआ है। अब हमारे खानदान वाले पूरे यहाँ से वहाँ तक बेहूदे हैं, मिसाल के तौर पर नमाज नहीं पढ़ते, मिक्स गैदरिंग करते हैं, खाने पीने में एहतियात नहीं है, हराम खाते हैं, हराम दावत, अब हमें ये लगी हुई है कि अपने ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए खानदान वालों से, अब हम उसमें जा रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ये करना चाह रहे हैं, इस पर इस्लाम का फतवा दो कि ये सही है, अपने फ्रेम में इस्लाम को लाके बिठाओ, भाई ये नहीं है, इस्लाम हमें ये नहीं सिखा रहा, इस्लाम ने कहा कि भाई ताल्लुकात की बेस अल्लाह को रखो, अल्लाह के रसूल को रखो, तो हम अपने खानदान वालों पर इस बात को वाज़े करेंगे कि भाई देखो अल्लाह रसूल ने अगर दावत देनी है तो ये तरीका बनाया है, अगर ऐसी दावत तुम करोगे तो हम आएंगे, तो फिर तुम्हारे भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, अल्लाह रसूल से भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, और अगर तुम इसकी खिलाफ वर्जी करोगे और हम तुम्हारी मुआफ़त करेंगे तो हमारे तुम्हारे ताल्लुकात तो अच्छे रहेंगे लेकिन अल्लाह रसूल से हमारे ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे, अल्लाह रसूल से अगर ताल्लुकात बिगड़ गए और आप खुश हो गए हमें क्या मिलने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है, सिले रहमी कतः रहमी की बुनियाद भी यही है, जहन में रखो अच्छी तरीके से, हमारा ख़ानदान वही है जो शरीयत के मुआफिक हो, शरीयत के मुखालिफ अगर है तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को अपनी औलाद को औलाद बोलने से मना कर दिया, उनका बेटा ईमान नहीं लाया, हनू अलैहि सलाम का, हनू अलैहि सलाम पर सैलाब आ गया, उनकी कश्ती में सवार होने की शर्त क्या थी? ईमान लाना। नूह अलैहि सलाम ने अपने बेटे से कहा कि या बुनय्या अरकम माना वाला तकुम माल काफिर, बेटे सवार हो जाओ और काफिर मत बनो। काला सावी ला जबली यासिमुनी मिनल माह, कहने लगा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और पहाड़ पे थोड़ी कोई पानी आने वाला है, आप बेफिक्र हो बाबा। قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، فرمایا اللہ کے معاملے سے کوئی نہیں بچائے گا دیکھو سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے، اللہ نے رحم کرنے کا ضابطہ یہ بنایا۔ بس یہ بات ہی چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی اور تھپیڑے میں لے کے نکل گئی۔ قال نوح ربی ان ابنی من اہلی، اس کے بعد ایک دو آیتیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا میرا اہل ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ نوح تجھے اور تیری اہل کو میں بچاؤں گا، تجھے اور تیرے اہل کو میں بچا لوں گا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک نے وحی بھیجی، قَالَ يَا نُوح إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، نوح وہ تمہارا اہل نہیں ہے، إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اعمال آپ کے موافق نہیں ہیں۔ اہل نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ حرام کی اولاد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جواب انہو عمل غیر صالح سے دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا خون نہیں ہے، وہ تمہاری حلال اولاد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہے کہ جب تمہارا مذہب اس کا مذہب ایک نہیں ہے، تمہارا دین زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ ایک نہیں ہے، پھر وہ تمہارا نہیں ہوتا۔ انہو لیس من اہلک، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، تو جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کا مجھ سے سوال مت کرنا۔ انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ جاہل میں سے مت ہونا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بھی علم، نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار میں معافی چاہتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ایسی بات کا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے، رحم نہیں فرمائیں گے، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو تعلق کی بنیاد بتا دی اپنے خاندان والوں سے، صلہ رحمی آپ کو کہاں تک کرنا ہے، غیر شرعی چیز میں کوئی صلہ رحمی نہیں ہوتی، اسلام کا بنا ہوا ایک سیٹ اپ ہے، اس میں خود جا کے بیٹھنا ہے ہم کو، ہمارے عقیدوں میں بھی، ہماری عبادتوں میں بھی، ہمارے معاملات میں بھی، ہمارے بزنس میں بھی، ہماری معاشرت میں، ہمارے کلچر میں، ہماری تہذیب اور ثقافت میں، ہمارے حقوق میں بھی۔ یہ واقعہ اس پر آ گئی کہ ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کی بہت ہی زیادہ تاکید کے ساتھ میں تعلیم دی گئی ہے اسلام میں، اور ان حسن سلوک میں سے زندگی میں بھی ان کے ساتھ میں سلوک ہوتا ہے اور زندگی کے بعد بھی ان کے ساتھ میں سلوک ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے جو تعلقات والے ہیں ان کے گزرنے کے بعد ان سے اچھا سلوک کیا جائے، ان سے جو محبت کرنے والے لوگ تھے، ان سے جو دوستی رکھنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے پاس باضابطہ ہدایا اور تحائف بھیجا کرتے تھے حد خدیجہ کے انتقال کے بعد۔ فرماتے تھے کہ یہ ہماری یہ خدیجہ کی سہیلیاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواجہ مطہرہ ام المومنین ہیں ان کی جتنی سہیلیاں تھیں ان کو باضابطہ ہدایا بھیجا کرتے تھے، اور اگر ان میں سے کوئی ملاقات کے لیے آتا، گھر آنا جانا ہو جاتا تھا کبھی، تو بہت اکرام فرماتے تھے ان کا، بہت سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ میں، اور پھر یہ بھی تعلیم فرماتے تھے کہ ان من یہ ایمان میں سے ہے یہ بات کہ آدمی اچھا سلوک کرے اہل ود ابی، اپنے باپ کے محبت والوں کے ساتھ، اپنے ماں کی محبت والوں، اپنے تعلقات والوں کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، خود ان کے ساتھ میں حسن سلوک کنسیڈر ہوتا ہے اصل میں، یہ ہے بات۔ تو یہ بات بھی ہے، تو وہاں تک کا اسلام نے جب حکم دیا ہے تو خود ان کے ساتھ میں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، تو زندگی میں بھرپور قدر ہونی چاہیے ان کی۔ اور اسی طریقے پر بیوی کے جو ماں باپ ہیں اس میں بیوی کے ماں باپ، بیوی کو موقع دینا چاہیے اپنے ماں باپ کی پوری خدمت کرنے کا، اور اس میں مرد کو تعاون کرنا پڑتا ہے بہت مرتبہ، چونکہ اس کی اجازت پر موقف ہے، اور اس کی اجازت پر ہی اس کو उसके जिम्मे आती है बात। अगर उसकी इजाज़त नहीं है तो फिर औरत के जिम्मे नहीं आती अपने माँ बाप की खिदमत, लेकिन अगर उसकी तरफ से इजाज़त हो तो फिर आती है। और यह सआदत की बात है कि आदमी इजाज़त भी दे, और न सिर्फ इजाज़त दे बल्कि वो हिस्सा भी ले उसमें फिजिकली तौर पर। जैसे मैं खुद जानता हूँ माशाल्लाह हमारे अनीस मियाँ को, कि वो हमारे कमरुज़्ज़मान साहब की बड़ी खिदमत खुद भी करते थे, आते थे यहाँ खिदमत करते थे, दवाखाने को लाना ले जाना ये सब चीज़ें होती रहती थी, सफ़र भी होता था कभी शिकागो का माशाल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने ये अकदार बनाए हैं कि उनके साथ में हुस्न सलूक करना, और उनके इंतकाल के बाद में दुआए मगफरत का अहतमाम करना, ईसाले सवाब भी करना है। ईसाले सवाब के लिए अलग हदीसें और नुसूस हैं, इसलिए बोलते वक्त दोनों मिला के बोलते, लेकिन हदीसों में दो मिला के नहीं, अलग अलग हैं वो। तो ईसाले सवाब का अहतमाम है, और दुआए और जनवाल दुआए मगफरत का अहतमाम है। दुआए मगफरत के अहतमाम में कैफ मुत्तफ़क़ आदमी हर नमाज के बाद जब आदमी रबी अग़फ़िरली वलिवालिदैया, रबी अग़फ़िरली वलिवालिदैया बल्कि वालिदैन को मिला लेता है, उसमें वो शामिल हो जाते हैं। या अलग से भी है उनकी दुआ रब रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, जैसे बचपन में उन्होंने हमारे साथ तरबियत की और हमारी कमज़ोरी के बावजूद हमारी रियायत रखी पूरी, तभी तो हम बड़े हो सके। तो आप उन पर भी ऐसे ही रहम फरमाइए। ये दुआ करने का हुक्म दिया गया है, सिखाया गया है बाज़ाब्ता। और उसके साथ साथ ये है कि जितना कुरान शरीफ पढ़ के बख्शा जा सके उसको बख्शना चाहिए, और जो सदक़ात मालिया हो सकते हैं वो भी किए जा सकते हैं, वो करना चाहिए। सदक़ात मालिया के अंदर जो पायदार किस्म का सदका होना, उसकी तरफ तवज्जो करना ज़्यादा। आमाल दो किस्म के रहते हैं, आप जान से करो या माल से करो, पायदार वाले ना पायदार वाले, टेम्पररी तौर पर। तो अमल वो भी है, अमल वो भी है, सवाब उसमें भी है, सवाब उसमें भी है, लेकिन समझदारी की बात यह है कि जब हमारा पैसा लग रहा हो कहीं ना, तो अगर वो पायदार में लगेगा, ज़्यादा फ़ायदा देने वाला होगा, तो हमारी कम आमदनी ज़्यादा होगी ना, हमारी कमाई ज़्यादा होगी उसमें, हमारा सवाब ज़्यादा होगा उसमें, वो करने का है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी बच्चे को हाफिज़ बना दें, किसी के इसाले सवाब के लिए, वालिदैन के साथ इसाले सवाब के लिए एक बच्चे को हाफिज़ बना दें, क्या खर्चा आता? कुछ भी ज़्यादा नहीं आता। अगर अमेरिका में कर देंगे आप तो ज़रा ज़्यादा आएगा, लेकिन यही आप हम इंडिया पाकिस्तान में कर देंगे तो बहुत थोड़े में होता है बच्चा हाफिज़। अगर हम 2,000 रुपये बच्चे को फ़ीस के तौर पर मदरसे में दे देते हैं, 3,000 दे देते हैं चलो, तो 3,000 रुपये मदरसे की फ़ीस अगर हम किसी बच्चे की बर्दाश्त करते हैं, 3 साल में बच्चा हाफिज़ होता है। पाकिस्तान वालों के पास तो $150 है, $150 हैं 1 रुपये के, समझ में आ गया नहीं आ गया? उसमें से जना वाला कि अगर आप 3-3 हज़ार का भी हिसाब रखते हो, मालूम नहीं मेरे को कि पाकिस्तान में फ़ीस का क्या सिस्टम चल रहा। हमारे पास 1,000 से 1,500 तक फ़ीस है इंडिया के अंदर, और वहाँ पे 70-72 रुपये चल रहा है। एक बच्चे को आप हाफिज़ बनाएंगे कितने देना पड़ता है आपको? $300 से $400 जो है ना, 1 साल के लगते हैं। 1 साल के $400 अगर आप वहाँ भेज देंगे तो अच्छी अच्छी फीस जो है ना मदरसे को आप दे दे सकते हैं एक हाफिज़ बच्चे की। 3 साल आपको देना है, एक हाफिज़ आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपके वालिद साहब के अकाउंट में या आपके वालिदा के अकाउंट में या आपके अकाउंट में आ जाएगा। क्या खुशनसीबी है! कितना पढ़ता है वो, सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हैं, याद करते रहते हैं, हर हरफ पर 10 नेकियाँ। जब उसको 10 नेकियाँ मिलेंगे तो आपको भी पूरे 10 नेकियाँ मिलेंगी, और वो भी कम से कम दर्जे की है। बगैर वजू के पढ़ने पर है, बगैर नमाज के, बगैर वजू में पढ़ने पर 1 हरफ के 10 नेकियाँ हैं। वजू से पढ़े तो 20 है, नफिल नमाज में पढ़े तो 100 है, फर्ज नमाज में पढ़े तो 200 नेकियाँ हैं हर हरफ पर, और पढ़ाता रहेगा फिर वो। अब हाफिज़ है तो उस्ताद भी बनेगा वो अपने हाफिज़ बनाएगा, तो जितों को वो हाफिज़ बनाएगा वो आपके अकाउंट में भी रहेगा फिर वो जितों को बनाएगा। ऐसे आप किसी को आलिम बना दें, आलिम की फ़ीस भी तकरीबन इतनी होती है। फ़र्क यह है कि उसकी फ़ीस चलती है 6 साल तक, इसकी 3 साल में होती है, उसको 6-7 साल लगते हैं। आपको हर साल $400 यानी बर्दाश्त करने पड़ेंगे साल में, एक बड़ा आलिम आपके नाम पे हो जाएगा भाई। लोग आलिमों को बाद में ख़रीदना चाहते हैं, और जो बाद में बिकने वाला आलिम होता है ना, वो किसी काम का नहीं रहता है, आपको कुछ भी नहीं दिला सकता हूँ। अगर यह है कि आप अपने अकाउंट में आलिम डाल लो पूरा, कमाल की बात यह है, 6-7 साल किसी का खर्चा बर्दाश्त कर लो मदरसे में, वही मैं फलां बच्चे का खर्चा मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, ये ले लीजिए आप जितने भी फीस उसकी आप लेना, अच्छी से अच्छी जो फीस लेते हैं वो ले लीजिए मुझसे आप, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद में देख लो आप जितना आलिम बनाएगा, जित एक मसले का सिखाना 1,000 रकात पढ़ने से ज़्यादा होता है एक मसले का बोलना। यानी अभी हमने कई मसले आपको जिक्र किए ना आपस में, हमने आपने सुने, हमने सुनाए, तो कई मसले हमने एक दूसरे को सुना लिए, इशारे से आपको सुनाया, ये सुनाए, वो सुनाए, कितने हज़ारों रकातों का सवाब इसमें, हमें याद नहीं ना असल में, हमारा जहन इसमें काम नहीं करता कि क्या कमाई हुई, हमारा तो पैसों पे दिमाग है पूरा। अरे आज वीकेंड है, आज तो कमाई का दिन है नहीं, चलो छुट्टी है आज, बगैर कमाई के चलो जाके बैठ जाते हैं। हमारे दिमाग में तो ये असल कमाई तो अमल की होती है, असल कमाई तो हसनात की होती है, असल करेंसी तो हसना है जो आखिरत में चलने वाला है। यहाँ नहीं डॉलर चल सकता, ना पाउंड चल सकता, ना यान चल सकता, ना रियाल चल सकता, ना यूरो चल सकता, ना कुछ सोना चांदी नहीं, वहाँ पे हसना चलता है, वहाँ का करेंसी वो है, वो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने रखी हुई। एक एक हज़ार रकात से ज़्यादा है एक मसले का सुनना सुनाना, चार मसले अगर हम सुना लिए तो 4,000 रकातों से ज़्यादा हो जाते हैं खाली। एक आलिम अगर आपको मिल गया और आपके अकाउंट में आ गया तो जो अमल अच्छे करेगा उसी का तो आपको बदला मिलेगा ना, अगर वो गड़बड़ करता है, वो गलत अमल करेगा तो आपको उसका गुनाह नहीं होगा, क्योंकि गुनाह का इसाल नहीं होता, वो तो बताया जा चुका है। सवाब का इसाल होता है, नेकी का इसाल होता है, इसाल माने पहुंचाना, उसका उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दोस्त ऐसी चीज़ें बनाई, मस्जिद बनवा दो, सराया बनवा दो, अपने अपनी बस्तियों में इधर उधर जो है ना बोरिंग की बोरवेल की ज़रूरत पड़ती है, पानी की कमी होती है, बोरवेल डलवा दो, इस सदक़े जारिया के काम ऐसे होते हैं, ऐसे करवा देते हैं, मदरसा बनवा दो, दीनी तालीम का मरकज़ बनवा देना, ये बहुत ही खैर की चीज़ होती है, क्योंकि जब तक पढ़ना पढ़ाना कुरान हदीस का चलेगा उसमें हमारा सवाब मिलेगा। तो ये इंतज़ार होता है गुजर जाने वाले को, और हम तो अपनी जगह पर काम में, बीवी बच्चों में, कमाने में, खाने में, रोज़मर्रा की मशगूलियत में लग चुके हैं, उन वो अपने मेरे दोस्त फारिग हो चुके हैं अपने काम से, अब वहाँ पर अमल का मैदान नहीं। कोई एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना चाहे तो वहाँ नहीं कह सकता, हम भी जब चले जाएंगे तो हम एक मरतबा सुभान अल्लाह कहना चाहेंगे तो नहीं कह सकते, और जाना तो है ही। यही बात अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाई है कि कुल नफ्स ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को चखना है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी की इत्तला मिलती तो आप क्या फरमाते, यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल असर, आप हमारे आगे चले गए, हम पीछे से आ रहे हैं आपके पास, आज वो कल हमारी बारी है। मौत से किसको रुस्तगारी है, किसी को मौत से छुटकारा नहीं, वो चले गए, हम उसके बाद में जाना है। और ज़्यादा ख़ानदान वही जमा है अपना, छोटा ख़ानदान यहाँ है, बड़ा ख़ानदान तो वहाँ जा चुका है, वो गए, उनके बाप हैं, उनके बाप के बाप हैं, उनके बाप के बाप हैं, उनके बाप के बाप हैं, उनकी माँ है, उनकी माँ की माँ है, उनकी माँ की माँ है, उनकी बहन भाई मामू चचा पप्पा सारे, ज़्यादा बड़ा ख़ानदान जा चुका है। अब जैसे होता ना पाकिस्तान से जाना वाला मूव होकर इधर आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इमिग्रेशन लेते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं इमिग्रेशन लेते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अब उसके बाद बोलते हैं कि भाई अब तो बड़ा ज़्यादा ख़ानदान तो अब मिशिगन में ही चले गए, बोले वहाँ दो चार रह गए, बोले ये पिंडी में है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक लाहौर में है, एक कराची में है, फलां जगह। ऐसे हमारे इंडिया का हिसाब है, बड़ा ख़ानदान इधर आ गया, छोटा वहाँ रह गया, और किसी के दिमाग में ये नहीं है कि असल बड़ा ख़ानदान तो वहाँ है जो अंदर गया है, और सबको वहीं जाना है, और छूटना किसी को नहीं है। जब मलकुल मौत आता है, किसी की रूह निकालने के लिए आते हैं, और घर वाले रोने लगते हैं, तो हदीस शरीफ में आता है कि वो दरवाज़े में खड़े हो जाते हैं और पलट जाते हैं घर वालों की तरफ, क्योंकि बराह रास्त घर वाले नहीं सुनते, तो इसलिए जो सुनते हैं उन्होंने खबर दी हमको, और वो खबर देने वाले बिल्कुल सच्चे हैं, अगर हम सुनते भी तो वो डाउटफुल होता, उनकी खबर देना वो हमारे सुनने से ज़्यादा यकीनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन करना इसीलिए तो ईमान है ना, कि अगर हम बराह रास्त सुनते तो वो बात ना होती जो उनके सुनने पर है, हम बराह रास्त जाने तो वो बात ना होती, वो यकीन उतनी यकीनी नहीं होती जितने आपके फरमाने पर यकीनी है। हुजूर ने बताया कि मलकुल मौत दरवाजे में खड़े होकर पलट जाते हैं, और ये कहते हैं कि तुम लोग रोते क्यों हो, मैंने इसकी रोज़ी कम नहीं की, मैंने इसका पानी कम नहीं किया, जब इसने पूरा अपना इस्तेमाल कर लिया मैं इसको ले जा रहा हूँ, और दूसरे का मैं इसको इस्तेमाल करने क्यों दूंगा, जब वो दूसरे का है तो दूसरे का एक लुकमा इसको इस्तेमाल करने नहीं दूंगा, और इसका एक लुकमा भी इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा, इसका तो यही खाएगा। और फिर उसके बाद में फरमाते हैं सुना कि मैं तो इस घर में बार बार आता रहूंगा जब तक कि तुम में से कोई भी जिंदा है, मेरा तो काम ही है रोज़ाना, तो मुझे यही देखना होता है कौन सा पत्ता पीला पड़ा कौन सा नहीं। एक दरख्त है उनके सामने जिसके पत्ते पीले होते रहते हैं, जिस आदमी की ज़िंदगी इस दुनिया की ख़त्म होती है तो वो गिनते रहते हैं कहाँ का पीता पत्ता पड़ गया, कहाँ का पत्ता तोड़ना है, कहाँ का पत्ता तोड़ना है, कहाँ का पत्ता तोड़ना है, और वो इतनी बड़ी शख्सियत है, वो ऐसा बड़ा हुजूम है उनका, फरिश्ते बहुत बड़ी बड़ी मखलूक हैं, फरिश्ते जो हैं वो बहुत भी बहुत बड़ी बड़ी मखलूक हैं, उनके सामने पूरे लोगों को जो है ना एक साथ मार देना करना कोई मसला नहीं है। अभी तनज़्ज़ुल मलाइकतु व रूह है ना, व रूह जो सूरह क़द्र के अंदर है, रूह के ऊपर मैं किताब में देख रहा था, उसमें लिखा है कि रूह इतना बड़ा फरिश्ता है, इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसको 70,000 मुंह हैं, और उसके हर मुंह में 70,000 जुबानें हैं, اور اپنی ہر زبان سے وہ 70,000 لغتوں میں اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ایک لقمے میں نگل سکتا ہے، ایک لقمے میں، ایک بائٹ سمجھ لو آپ، جیسے آپ بسکٹ کی، بسکٹ کی کوئی بائٹ لیتے ہیں، اس کے واسطے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی حیثیت ایسی ہے، ایسے بڑے بڑے فرشتے ہیں، حاملین عرش جو ہیں اس وقت، جو سات چار فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائیں گے اس کو، یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، قرآن پاک میں. تو ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ ایک ایک فرشتے، چار فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں، ہر فرشتے کے دو مونڈوں کے درمیان کے حصہ اتنا بڑا گیپ ہے اس میں، کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک تل کی طرح سے ہیں اس کے لیے. عرش اتنا بڑا ہے، عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ایسے بڑے بڑے ہیں. فرشتوں والی مخلوق بڑی عجیب و غریب ہے. تو اسرائیل علیہ السلام، ان کے اپنے حواری بھی ہیں ساتھ میں، خدام ہیں بہت، چونکہ وہ تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے نا، جیسے اسرافیل علیہ السلام ہیں اور اسرائیل علیہ السلام ہیں، میکائیل علیہ السلام ہیں، جبرائیل علیہ السلام ہیں، یہ چار فرشتے اپنے اپنے برانچز کے، اپنے اپنے شعبوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں. ان کے ماتحت میں ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن ان کا خود کا بھی اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ کبھی بھی پہنچ سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل ہی نہیں ہے. وہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس گھر میں بار بار آتا رہوں گا جب تک کہ کوئی ایک بھی متنفس یہاں پر موجود ہے، کیونکہ جانا تو سب کو ہے، دنیا بنائی گئی ہے ٹیمپرری، یہاں تھوڑے دن رہنا ہے. یہی ہمیں دھوکہ ہو کہ ہم بھول جاتے ہیں اس کو اور موت کو یاد تک نہیں کرنا چاہتے ہیں. ارے ہم کبھی کسی دن مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے. ابھی تو کافی حالات بدل گئے. 80s میں شکاگو میں ایک میت میں ہم گئے تھے، وہاں پہ میوزک لگی ہوئی ہے، موسیقی لگی، میت کے بازو موسیقی لگی ہوئی. یہ کیا بدتمیزی ہے، ہم نے گانا لگا موسیقی لگا دی. تو بولے وہ موت کا خیال آ کے ڈسٹرب نہیں ہونا بول کے لگائے، اور میت پڑی ہوئی ہے گھر میں، اور ہم گئے ہیں وہاں پہ، یعنی یہ ایسا واقعہ سنا ہوا واقعہ نہیں ہوتا، یہ بھگتا ہوا واقعہ ہے. اس زمانے میں تو اور بھی بہت دوری تھی، 80s میں تو بہت ہی کم تھا نا معاملہ. وہ لوگ موت کو سننا نہیں چاہتے، اور حدیث میں کیا ہے کہ کم از کم 20 مرتبہ موت کو سوچا کرو ایک دن میں، ایک دن میں 20 مرتبہ سوچو. جو آدمی ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو سوچتا ہے، اگر وہ اس دن مرے گا تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. اور جو آدمی موت کو سوچنے والا ہوتا ہے، اس کی لذتوں میں کمی آ جاتی ہے، اور ہم لذت میں ہی کمی نہیں کرنا چاہتے. اور حدیث چاہتی ہے کہ انسان دنیا میں لذت میں کمی کرے تاکہ وہ آخرت کی تیاری کر سکے. حب العیش، مزے میں، مزے کی زندگی گزارنے کا شوق ہی آدمی کو بے ایمان بناتی ہے. یہاں بے دینی کا راز کیا ہے، بے ایمانی کا راز کیا ہے؟ بے دینی اور بے ایمانی کا راز ہے اس دنیا کو جوائے سے فل کرنے کی کوشش، انجوائبل لائف، مزیدار زندگی گزرے، کسی چیز کی کمی نہیں رہنا، ٹرانسپورٹیشن کی کمی نہیں رہنا، روڈوں کی کمی نہیں رہنا، گھر ایسا رہنا، پیسے ویسے رہنا، کھانا ایسا رہنا، سہولتیں یہ رہنا، فیسلٹیز وہ رہنا، کیوں رہنا، کتنے دن رہنا ہے، کتنے دن رہنا ہے انسان کو یہاں پر؟ سب چلے گئے، بڑے بڑے نواب چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، فرعینہ چلے گئے، قیاسرہ چلے گئے، قیاسرہ چلے گئے، نواب چلے گئے، بےمان بھی چلے گئے، ایمان والے بھی چلے گئے، انبیاء بھی چلے گئے، اولیاء بھی چلے گئے، صحابہ بھی چلے گئے، کفار بھی گئے، فساق بھی گئے، منافقین بھی گئے، دہریے بھی گئے. اس دنیا میں رہا کس نے، کس کو رہنا ہے اس دنیا میں؟ یہی تو اصل چیز ہے کہ آدمی اس دنیا کے ٹیمپرری ہونے کو اور عارضی ہونے کو یاد رکھے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا کے مقدر ہونے کے لیے یہ بات بہت کافی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، کوئی کتنا بھی رہنے کی کوشش کرے اس سے چھین لیا جاتا ہے، چھڑا لیا جاتا ہے اس کو. اس ٹائم مشین گوشت کی بنی ہوئی ہے. ہر آدمی کی لائف کس سے بنی ہوئی ہے؟ ہمارا جو وجود ہے وہ کس کا ہے؟ گوشت کا بنا ہوا ہے، گوشت ہڈیوں کا ہے. اسٹیل کی بھی مشین نہیں ہے یہ، لکڑی کی مشین نہیں ہے یہ، پلاسٹک کی بھی نہیں ہے، ان کی تو لائف ذرا بڑی بھی ہوتی ہے، پھر بھی گوشت کی ہے. فریج میں رکھنے میں تھوڑا آنا کانی ہو گئی تو بدبو ہو جاتی ہے، سڑ جاتا ہے وہ. کیسا بیلنس اللہ پاک نے روح کے ذریعے سے اس کو کیا ہوا ہے، تھوڑا روح آگے پیچھے ہو بھی یہ سڑ جاتا ہے. تو کب تک چلے گی یہ؟ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اس دنیا میں 60-70 سال کی رکھی ہے، ہمارے زمانے میں بس ختم. 50 کا نکل گیا آدمی، اب کیا بچا اس کے پاس؟ کچھ بول ہی نہیں سکتے. अच्छा तो छोटेपन में भी नहीं भरोसा है, चूंकि कितनी जिंदगी लेके आया नहीं मालूम है। लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसी कोई सूरत हाल नहीं भी पैदा हुई तो 50-60 के बाद क्या है, अब तो हो ही गया ना तकरीबन। वकई फतल आबू वल खमसु नकद कमलत वकई फतल हु वना रुशाई बिफी शोली। अब खेलने का टाइम कहाँ है जबकि 50 हो गए। अरबी अरब शायर हैं, बुजुर्ग हैं, वो फरमाते हैं वकई फतल आबू वल खमसु नकद कमलत, 50 जब पूरे हो गए तो अब खेलने का टाइम कहाँ है। वकई फतल हु वना रुशाई बिफी शोली, और अब लहव लईब में रहने का टाइम कहाँ है जबकि बुढ़ापे की आग भड़क चुकी है। ये सफेदी जो है ना इसको बुढ़ापे की आग कहते हैं। वनार उशई भी फी शोल, बुढ़ापे की आग भड़क चुकी है, ये शोला लग चुका है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज़ है कि आप कुछ भी कितना भी खिताब लगा लो आप कुछ होने वाला नहीं होता, वो तो बस आ गई सो आ गई, आके जो ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जाके जो ना आए वो जवानी देखी। जवानी का मामला है कि वो चली जाती है तो फिर आती नहीं। आखिरत की जवानी की खसूसियत यह है कि वो आने के बाद जाएगी नहीं, बल्कि हर आने वाला वक्त जवानी को बढ़ाएगा। वहाँ पे तरक्की है, ज़िंदगी को ऐसा नहीं है, जवाल नहीं है वहाँ पे, ऐसा उरूज है खाली। वहाँ पे तंदुरुस्ती है उसके साथ बीमारी नहीं, वहाँ पे जवानी उसके साथ में बुढ़ापा नहीं, वहाँ पे ज़िंदगी उसके साथ में मौत नहीं, वहाँ पे नेमतें उसके साथ में जवाल नहीं, वहाँ पे इज्जत उसके साथ में जिल्लत नहीं, वहाँ पे गिना उसके साथ में फ़ख्र नहीं। इस सब के मजमूए का नाम फलाह है। फलाह की तारीफ यही लिखी है मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ने मिश्कात की शरह में, उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जिनको हिदायत मिल जाएगी वो फलाह पाएंगे, और फलाह किसको कहेंगे? इज़्ज़ुन ला ज़ुल्ला बादहु, गिनन ला फ़क्र बादहु, सेहतुन ला मरद बादहु, हयातुन ला फना ला मौत बादहु, शबाबुन ला शेख ला शुयूखत ला हरम बादहु। वो वहाँ पे है निज़ाम उसका। तो असल आखिरत की ज़िंदगी हमारे लिए जो बनाएगी ये तो टेम्पररी है। तो जितना ज़्यादा और किसी की मौत पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज अपनी मौत है। एक जनाजा जा रहा था, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जनाजे में थे। एक आदमी तेज 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 से जनाजे में शिरकत के लिए आएगा, कह लिया किसका जनाजा है ये? तो बुरा फरमाया तेरी अम्मा का है, और अगर तुझे बुरा लग रहा है तो मेरी अम्मा का है। कह लिया किसका जनाजा पूछ रहा तू? अबे पहले जनाजे में शिरकत कर, तुझे अपनी मौत की पड़ जानी चाहिए थी कि अब ये जा रहा है कल मुझे जाना है, अभी तो मैं मस्जिद आ रहा हूँ कल मुझे ले जाया जाएगा मेरे फ्यूनरल को, अभी तो मैं जा रहा हूँ वो खुद, अब वो तो मुझे मैं जा भी नहीं सकूँगा मुझे ले जाया जाएगा। दुनिया रंगोबू से ख़त्म, ताल्लुकात ख़त्म, बीवी बच्चे ख़त्म, पैसा दैसा ख़त्म, प्रॉपर्टी सब ख़त्म, कोई चीज़ किसी चीज़ को आदमी लेके नहीं जाता, कोई उसके काम की नहीं रहती, ना कपड़े ना गाड़ियाँ और ना डिप्लोमे ना सर्टिफिकेट्स ना पैसा ना बैंक बैलेंस ना मकान खुशी का बनाया हुआ या ज़बरदस्ती करा हुआ ना बीवी ना बच्चे, सब छूट जाता है। किसी की मौत पर सबसे ज़्यादा अपनी मौत की याद करना और उसकी तैयारी की तरह दहन को ले जाने का होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला नाराज़ हो गए एक आदमी के सिर्फ इतना पूछने पर कि ये किसका जनाजा है। कह रहे कि तुझे तो इतना भी नहीं पूछना, बाद में पूछ लेता, अभी तो अपन जनाजे के साथ चल रहे हैं, तो जनाजे को अपने मंजर को आंखों के सामने देख रहा, फिर तुझे अभी इसकी पड़ी हुई है किसका है किसका नहीं है। यानी वो लोग वैसे थे कि उनको ये भी चीज गवारा नहीं थी। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। वइन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम पूरा पूरा दिए जाओगे तुम्हारा बदला क़ियामत के दिन, जो तुम करते हो वो तुम्हें मिलेगा। गंदुम अज गंदुम बरो या जो जो, गेहूँ बोओगे तो गेहूँ, जौ बोओगे तो गेहूँ। यानी अच्छा अमल बोओगे तो अच्छा नतीजा, बुरा अमल करोगे तो बुरा नतीजा। आमाल बीज की तरह से है, दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ नमाज पढ़ते हो तो उसका बदला मिलेगा, या नमाज छोड़ते हो तो उसका बदला मिलेगा, यहाँ रोज़ा रखते हो तो उसका बदला मिलेगा, यहाँ रोज़ा छोड़ते हो तो उसका बदला मिलेगा, यहाँ अखलाक रजीला को इख्तियार करते हो तो उसका बदला मिलेगा, अखलाक रजीला का तज़किया करते हो तो उसका बदला मिलेगा। हसद है, कीना है, कपट है, तकब्बुर है, रियाकारी है, दिखलावा है, तमा है, हिर्स है, बुखल है, बुजदिली है, अगर इन सिफात के साथ जाते हो तो वो बदला मिलने वाला है। जहन्नम के कीड़े, जहन्नम के सांप, जहन्नम के बिच्छू, यही शक्लें इख्तियार करने वाली हैं। फमन ज़ुहज़िहा, अल्लाह ताला फरमा रहे फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जिसको आग से बचा दिया गया, जिसको आग से कल बचा दिया गया, वह उदखिल जन्नत, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, فقد فازا, وہ کامیاب ہو گیا. اس کی فکر لینا, کسی کی موت پر کسی کی تعزیت کے جلسے میں سب سے زیادہ جس چیز کا آدمی کو سبق لینا ہوتا ہے وہ یہ ہے, جیسے وہ چلے گئے ایسے ہمیں بھی جانا, وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے, وہ جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ پا لیں گے, اچھا کیا اچھا پائیں گے, برا کیا برا پائیں گے. ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے, اس کا اہتمام کریں گے, لیکن ہم اپنے بارے میں, کوئی ہمارے لیے کرے گا نہیں کرے گا, کرے گا تو کیا ہوگا, ہمیں کیا اندازہ ہے, کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے بتائی, فمن زحزح عن النار, جو آگ سے بچایا گیا, اصل آگ سے بچنا ہے, جہنم سے بچنا ہے. وہ ادخل الجنہ, اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فازا, وہ کامیاب ہو گیا. ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کی چیز ہے. یہ بات جو ہے نا کہ یہ دھوکے کی چیز ہے, یہ بہت پکڑنے کی بات ہوتی ہے, سمجھنے کی چیز ہے. یہ کیا کیا دھوکا ہے یہاں پہ, آدمی کس چیز کا دھوکا کھاتا ہے یہاں پہ؟ اس چیز کا دھوکا کھاتا ہے کہ جو جہنم سے بچنے کا سامان ہے وہ نہیں کر پاتا دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے, جو جنت میں جانے کا کام ہے وہ نہیں کر پاتا دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے. جو آدمی کو دنیا اتنا انوالو کر لے اپنے ساتھ میں کہ اس کو جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوشش کرنے سے روک دے یا اس کا موقع نہ دے, وہ دنیا کے دھوکے میں آ گیا. اور جو آدمی دنیا کی اس مشغولیت کے باوجود اس معاملے میں پوری طریقے سے کیئرفل رہا, وہ دنیا کے دھوکے سے بچ گیا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, تم کو ضرور, اس کے بعد والی آیت ہے یہ, تم کو ضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. تم اپنے مال اور اپنے جان سے آزمائش میں ہو, تو مال کی مشغولیت ہو یا جان کی مشغولیت ہو, یہ دونوں کے دونوں مشغولیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کرنے والی ہونا ہے, اللہ سے دور کرنے والی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مرحوم کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر اور اپنے حالات کی درستگی کی فکر اور اپنے دین کو صحیح کرنے کی فکر اور اپنے دین پر جمنے کی فکر اور اپنی اولاد کو دین پر جمانے کی فکر, اولاد کے لیے اصل چیز یہی ہے کرنی, اولاد کے لیے ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا, کیا کیا. اگر جہنم سے بچانے کا کچھ کام کر دیا ہے تو واقعتاً آپ کو یہ بولنے کا حق ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں, اور اگر یہ نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بولنے کا کسی کو منہ نہیں ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے یہ کیا ہو کیا. اگر آپ نے جہنم سے بچنے کا کام نہیں کیا تو کیا کیا, ان کو جنت میں جانے کا کام نہیں کیا تو کیا کیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم, آپ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان اور اپنی بیوی بچوں کا نقصان قیامت میں کیا. الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ, جس کا وہاں نقصان سامنے آیا اس کا نقصان ہوا, دنیا کا کیا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کے حول خسران المبین, سن لو کہ وہ بہت بڑا نقصان ہے. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل, اوپر بھی آگ ہوگی نیچے بھی آگ ہوگی, وہاں ایسے حالات آ جائیں گے اگر خسارے سے نہیں بچایا. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ وہ چیز ہے کہ ڈراتا ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو. یا عبادی فتقون, اے میرے بندو ڈر جاؤ. تو جب اللہ ڈرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ڈرنے کی چیزیں میں ڈرا رہا ہوں, تم اس سے ڈر جاؤ, تو اصل یہی ہے, اپنے اولاد اپنے لیے بھی, اپنے مستورات کے لیے بھی, اور مستورات کے لیے ان کے ہسبینڈ بھی, اور ان کی دونوں کے لیے ان کی اولاد بھی, اولاد میں بچے بھی اور بچیاں بھی. جو فکر کرنے کی جو چیز ہے وہ یہ کہ اس دنیا عارضی, دنیا فانی اور دنیا ٹیمپرری, اس کا عارضی ہونا ہمارے ذہن میں بیٹھے اور اس کی محبت ہمارے دل میں نہ رہے, آخرت کی فکر آ جائے, اعمال کی فکر آ جائے, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے اپنے لیے بھی, تو ہم مر بھی جائیں گے تو اپنے انجام کے اعتبار سے اللہ پاک ہمارے لیے خیر فرما دے گا. بس ایک مرتبہ آدمی اس دنیا سے عافیت سے گزر جاتا ہے ایمان کے ساتھ اور دین کے ساتھ میں, تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی کامیاب ہو جاتی ہے. پھر وہاں بس چین کی بنسی وجہ, انہو قد فاز فوزا من نجا, جو نجات پا گیا وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اب تعالیٰ شانہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنی فکر نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے, اور اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرما دے.